आज की मुरली है 22/5/64 रिकॉर्ड चला है। कौन आया सवेरे सवेरे? ये बच्चे कहते हैं कौन आया, तो बाप समझाते हैं मैं साकार नहीं हूं, आकार में देवता भी नहीं हूं, मैं तो परमात्मा हूं। ये भी आत्मा कहती है कि परमात्मा हूं, सिर्फ अक्षर ऐड हो जाता है परम। तो परमात्मा माना परमात्मा, अर्थात परे ते परे स्टेज में रहने वाली आत्मा। उसकी महिमा है जिस परमात्मा को सभी भक्त याद करते हैं, इसको तो मनुष्य शक्ति कहा जाता है। और सतयुग में भी तो है तो मनुष्य ही, परंतु वो दैवी गुण वाले थे और इस समय आसुरी गुणों वाले बने हैं। आसुरी गुणों वाला बनाया किसने? कहेंगे रावण ने। बाप समझाते हैं स्त्री और पुरुष दोनों में 5 विकार हैं। अकेले रावण की बात नहीं है, तो माया रावण कहा जाता है। उनको मिलाकर रावण कहा जाता है। तो ये सब रावण की औलाद हो गए, जैसे विष्णु की औलाद 2 लक्ष्मी नारायण, परंतु ये हुए दैवी संप्रदाय और उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय, एक दो को दुख देने वाली संप्रदाय। तो ये बातें समझाते कौन हैं? वो समझाते हैं जिसको ये आंखें नहीं जान सकती। उनको जानने के लिए तीसरा नेत्र चाहिए, इसलिए कहते हैं इन आंखों से तो भगवान को नहीं देखा जा सकता। आत्मा अपनी बुद्धि से पहचानती है, और पहचानती भी तब है जब बाप पहचान देते हैं। कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, जैसे तुम आत्मा हो मैं भी आत्मा हूं, परंतु मैं बाप होने के कारण मुझे परमपिता परमात्मा कहा जाता है। पिता तो हूं, परंतु जो भी पिताएं हैं, चाहे धर्म पिताएं ही क्यों न हो, उनमें भी मैं परम हूं, इसलिए भगवान वाच कहा जाता है। अगर ब्रह्मा कहें तो कहते हैं ब्रह्मा देवता है वाच, ऐसे तो है नहीं कि ब्रह्मा भगवान वाच, ऐसे नहीं कहेंगे। नहीं, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कहा जाता है। तो एक ही बाप कहते हैं हे बच्चे, ये शिव भगवान वाचे है कि मैं तुम सब का बाप हूं। सब का बाप भगवान हूं, सब बच्चे मुझे याद करते हैं, क्योंकि सब बच्चों को फिर से सदा सुखी सदा शांत बनाता हूं। सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, हर कल्प कल्प आकर के शांत और सुखी बनाता हूं। जैसे मनुष्य मनुष्य को प्राइज देते हैं कि फलाना प्रीस स्थापन करने वाला लीडर है, परंतु यहां तो मनुष्य की बात ही नहीं है, सब मनुष्यों को प्राइज देने वाला वो बाप है। अभी तुम प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो श्रीमत से, तुम जो भगवान बाप के मददगार बनते हो उनको पीस प्योरिटी प्रॉस्पेरिटी का वर्षा मिल जाता है और मिलता है कल पहले मुआफिक। अब परमपिता परमात्मा का तो एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते, ब्रह्मा का तो फिर भी सूक्ष्म रथ है। ये परमात्मा जो स्टार है उनका फोटो कैसे निकाल सकते? परमपिता परमात्मा एक ही है और स्टार मुआफिक है, फोटो तो निकाल ही नहीं सकते। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है वो आत्माएं उनको जानते हैं, और ये नई बातें हैं इसलिए समझाते हैं तुम अपन को आत्मा समझो। ये शरीर तो बाद में मिलता है, पहले तो तुम आत्मा हो ना, तुम आत्मा अविनाशी हो इमॉर्टल हो। शरीर मरता है, शरीर युवा होता है वृद्ध होता है, आत्मा का तो चित्र भी नहीं निकाल सकते क्योंकि अति सूक्ष्म है। हाँ साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का तो नहीं निकल सकता। इसलिए बेचारे मुझते हैं समझ नहीं सकते हैं, अभी बाप समझाते हैं, कहते हैं सारा कल्प तुम दुश्मनी देह अभिमानी में रहे हो, अभी देही अभिमानी बनो। सतयुग में तुम्हारा दैवी शरीर था, फिर क्षत्रिय वैसे शुद्ध शरीर में आए, अभी हे आत्मा तुमको चेंज करना है। अभी मैं तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं और तुम इन कानों से सुनते हो, और कोई मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे। तुम यहां आए हो परमपिता परमात्मा शिव के पास, परंतु है तो वो निराकार, जरूर निराकार से साकार में आए हैं। तब तो तुम भी आए हो ना, तुमसे पूछा जाता है किसके पास आए हो, तो तुम कहेंगे हम शिव बाबा के पास आए हैं, हम शिव बाबा की गोद में आते हैं, आकर शिव बाबा के बनते हैं। तो गोद तो जरूर चाहिए, बाप की गोद चाहिए, नहीं तो दादे से वर्षा कैसे ले सकेंगे? तो ये दादा है बीच में दलाल, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी है। बीच में बाप न हो तो दादा कैसे कह सकते, बाप हो तब तो दादे की गोद ले सकते हैं। तो यहाँ सिवाय निश्चय के कोई भी आए नहीं सकता है। सिवाय निश्चय के आने का मतलब ही सिद्ध नहीं होता है। आते हैं शिव बाबा से मिलने, ब्रह्मा दादा द्वारा बाबा की गोद में जन्म लेने, तो बिगर हम उनके बिगर हम कैसे बन सकते हैं। समझ की बात है, फिर भी माया बेसमझ बनाई देती है, फिर बाप आए समझदार बनाते हैं। अभी तुम बाप को भूले हो इसलिए निर्धन के आर्फन बने हो, आदि मध्य अंत दुख भोगते आए हो, और आधा कल्प से आदि मध्य अंत दुख भोगा है। जब से तुम विकारी बने हो तब से तुम दुखी होते हो, अभी तो महा दुखी हो पड़े हो। जो देवताएं महासुखी थे वो इस समय महा दुखी है। कहां स्वर्ग का राजभाग, कहां ये नरक। तो तुम समझते हो कि शिव बाबा हमारा सच्चा सच्चा बाप है, जिससे हमको सचखंड का वर्षा मिलता है। ये बातें समझ करके तुम यहां आते हो, नहीं तो आने की दरकार ही नहीं है। 22/5/64 की वाणी का दूसरा पेज। बाहर में जाए तुम भाषण करते हो, वो कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो नहीं ठहरी, वो सिर्फ तुम समझाते हो कि बाप से आप आकर के पढ़ो तो तुम स्वर्ग के मालिक देवी देवता बनेंगे। तुम ये भाषण करते हो तो देवी देवता धर्म का जो होगा तो सैंपलिंग लग जाएगा। बाकी कॉलेज तो एक ही है जहां रोज पढ़ना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है, बाप के पास और तो कोई अहम आदत नहीं है। हम बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए सन्मुख आए हैं। इसमें भी बहनों की सर्विस जास्ती है। रखड़ी बंधन भी गाया हुआ है, बहनें भाई को रखड़ी बांधती हैं, माताएं शक्तियां हैं। तो अब इन्हों का मर्तबा जरूर ऊंचा करना है। भाइयों को भी कहते हैं तुम इन बहनों का मददगार बनो। सितम तो सहन करने पड़ते हैं, सितमों से बचना है। पूरी रीति न समझने के कारण फिर उल्टी सुल्टी बात सुनाने से फिर बेचारी अबलाएं बंधेली हो जाती है। तो जो उल्टे कर्म करते हैं बाप से वर्षा लेने में, औरों को बिघन डालते हैं, तो उन पर बड़ा पाप का बोझ चढ़ जाता है। यहां तो तुम आए हो जीवन बनाने के लिए, परंतु इस ज्ञान मार्ग में बिघन भी पड़ते हैं, क्योंकि इसमें पवित्रता की बात है और सत्संगों में तो पवित्रता की बात ही नहीं होती। क्राइस्ट को भी क्रॉस पर चढ़ाया, वो भी पवित्रता की बात थी। आत्मा पवित्र आती है, पवित्र बनाने की कोशिश करती है। तो जो गुरु लोग होते हैं, जो पोप पादरी लोग बन जाते हैं, बिगन डालते हैं। वास्तव में गुरु पवित्र होने के लिए चाहिए, परंतु आजकल तो गुरु लोग शादियां आदि भी कराए लेते हैं। तो प्योरिटी के बगैर मनुष्य कोई काम का नहीं है, और यहां तो प्योरिटी मुख्य है, इस पर विघ्न पड़ते हैं। जैसे अमली होता है तो उसको अमल न मिलने बगैर आराम नहीं आता है, वैसे ही विख बिगर भी रह नहीं सकते हैं, बिल्कुल ही बाजारी बैल बन पड़ते हैं। जिसने गीता सुनाई उनके लिए कहते हैं 108 रानियां थी, इतनी बड़ी नॉनसेंस बातें कर दी। बाप समझाते हैं, मैं तुमको पति से पावन राजाओं का राजा बनाता हूँ, फिर कृष्ण को इतनी रानियां हो, ये कैसे हो सकता है? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती है। विद्वान पंडित आदि इन सब की बुद्धि को दिवाला, इसको कहा जाता है इंसॉल्वेंट बुद्धिमान। गवर्नमेंट के भी साधु लोग गुरु हैं, वास्तव में तो गुरुओं की दरकार नहीं है, जबकि रिलीजियस हैं। परमपिता परमात्मा से विमुख होते होते ये हाल हो गया। परमपिता परमात्मा से बिना सिकाले सबकी विपरीत बुद्धि, सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तो तुम यहाँ जब आते हो तो ख्याल रहता है कि कोई संशय तो नहीं उठता है, नहीं तो अबलाओं पर बहुत बदिश आ जाती है, फिर वो बड़ी सजाएं खाएंगे, क्योंकि बाप धर्मराज भी है और हम तो बाप निराकार को कहते हैं। आजकल तो मेयर को भी बाबा कह देते हैं, गांधी को भी बापू कहते थे, परंतु वो गांधी कोई बापू हैं थोड़े ही, ये तो सब आत्माओं का बाप रियल में है और ये कोई फालतू बड़ाई नहीं है। बाप माना ही बाप, जो हम आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं, बाप आते हैं, इस बात में तो संशय आना ही नहीं चाहिए। और ये संशय लाने वाली है माया रावण भूत, क्योंकि संशय को ही भूत कहा जाता है, निश्चय को भूत नहीं कहा जाता है। निश्चय से तो तुम विजय पाते हो, संशय से विनाश को पाते हो। बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? बाबा माताओं की उपमा क्यों करते हैं? ऐसे ऐसे संशय आते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु इस समय माता गुरु कहा जाता है तो वंदे मातरम है। माता गुरु वगैरह किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता है। गोपों का भी कल्याण होता है माता से, वो फिर औरों की सर्विस करते हैं, मित्र संबंधियों आदि को ले आते हैं, कहते हैं चलो ब्रह्मा कुमारियों के पास आपको ले चले, तो तुम ब्रह्मा कुमार भी हो ना, और प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है। जब सृष्टि रची होगी तो जरूर भगवान आया होगा, और भगवान आया होगा तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। तो फिर पूछा जाता है ब्रह्मा को किसने पैदा किया? परमपिता परमात्मा तो है निराकार, निराकार से साकार ब्रह्मा की पैदाइश कैसे होगी? तो कहा जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा में आते हैं, नहीं तो मनुष्य सृष्टि रचे कैसे? मनुष्य कहते भी हैं सबको खुदा ने पैदा किया है, कैसे पैदा किया है? जरूर खुदा को किसी जिस्म में आना पड़े, तो उस जिस्म का नाम क्या है? संन्यास लेने के कारण, उनका बनने के कारण नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। तो देखो सृष्टि कैसे रची जाती है, ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। और तो बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ सदगति के लिए है और बाप ही सदगति दाता है। 22.564 की वाणी का तीसरा पेज, वो रचयिता ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, जो सदगति दाता है। बल सारी दुनिया में ढूंढो कोई है जो रचयिता और सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज बतावे, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के। सो भी अनन्य ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही जानते हैं, सब नहीं जान सकते। ये विद्वान पंडित सर्वव्यापी की पॉइंट पर इतनी बड़ी डिबेट करेंगे, जो माया तुमको भी चक्कर मिलाई देगी। तुम्हारी धर्म युद्ध हुई है विद्वान पंडितों के साथ, धर्म युद्ध को लड़ाई नहीं कहा जाता है। तो ये सिद्ध करना है परमपिता परमात्मा बाप है न कि वो सर्वव्यापी है। तो तुम्हारी इन्हों के साथ युद्ध हुई है और आखरीन वो समझ गए हैं कि ये ज्ञान इन्हों को परमपिता परमात्मा ही प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा देते हैं, इसलिए इनका नाम ही है ब्रह्म ज्ञान। कह देते हैं ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्मा ज्ञान, और ब्रह्मा को ज्ञान तो जरूर बाप से मिला होगा, नहीं तो ज्ञान कैसे मिलेगा। वो है ज्ञान का सागर कौन, उनकी ही महिमा है। ज्ञान का कलश फिर भी माताओं को दिया है, बाप आए इन माताओं को ऊंच बनाते हैं। ऐसे भी नहीं है कि पुरुष ऊंचे नहीं बनते हैं, तो पुरुषों को हसद में नहीं आना चाहिए कि माताओं का नाम क्यों लेते हैं। अरे माताओं को नग्न करने वाले भी तो पुरुष ही है ना, दुर्योधन द्रौपदियों को नग्न करते आए हैं ना, ले जाते हैं बिख पिलाए दुखी कर देते हैं, तो बाप आए नग्न होने से बचाते हैं, इसलिए माताओं का मर्तबा रखते हैं। तकलीफ तो माताएं ही लेती है ना, गर्भ धारण करती हैं फिर पालना करती हैं, कितना तकलीफ सहन करना पड़ता है। तो बाप आए माताओं का मान बढ़ाते हैं, बाप बच्चों को बैठ ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, जिसका नाम रखा है ब्रह्मा का ज्ञान, यानी परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। ज्ञान शिव बाबा का है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे, ब्रह्मा खुद भी कहते हैं मैं ज्ञान सागर नहीं हूं, मैं तो पतित हूं, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा का बना हूं तो बाबा ने नाम रखा है। तो एडाप्टेड जो होते हैं उनका नाम बदला जाता है। माने जिनका नाम नहीं बदला गया वो एडाप्टेड नहीं हुए अभी। हुए नहीं हुए है? अरे जो एडाप्टेड होते हैं उनका नाम बदला जाता है। तो हम एडाप्टेड हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो नाम बदल गया। हाँ बीके से पीबीके पड़ गया, परंतु लौकिक नाम बदल गया क्या? ये बीके पीबीके तो हम ब्राह्मणों के अंदर की बातें हैं, दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। तो कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बड़ी राजधानी स्थापन होनी है, सबका मर्तबा बदल जाएगा, लिखा हुआ भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। रुद्र माना ही शिव है, कृष्ण तो प्रिंस था, वो कैसे यज्ञ रचेगा? और गीता का भगवान कृष्ण है ही नहीं, उसने स्वर्ग की रचना की ही नहीं। स्वर्ग का मुखिया तो लक्ष्मी नारायण है ना, वो तो रचयिता ही रचेगा ना। तो ये बातें समझेंगे भी वो जो अपने कुल के होंगे। अपने कुल के माने देवता कुल के, देवी देवता धर्म वालों की ही सैंपलिंग लगेगी। और धर्म का पक्का होगा तो इन बातों को समझेगा ही नहीं। तुम समझते हो कि हम समझते जावेंगे, कहां तक उठाते हैं, सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में जाएंगे, प्रजा में जाएंगे, सब समझाते हैं। ये भी बताते हैं मौत पर तो कोई भरोसा नहीं है, आजकल तो बैठे बैठे झट मौत हो जाता है, इनकी बैठे में स्वर्ग में कब अकाली मृत्यु होता ही नहीं है। मनुष्य सुख के लिए मेहनत करते हैं कि हम अपन को सुखी कैसे बनावे, कैसे साहूकार बने। कोई भी होगा 5 रुपए मिलेंगे कोशिश करेगा, 6 मिले 7 मिले। बाप कहते हैं मैं तो तुमको संपत्तिवान बना देता हूं। सन्यासियों को तुम कहेंगे हम सुख चाहते हैं तो वो कहेंगे सुख को कागविष्ठा समान समझो। अब वो क्या जाने सुख क्या चीज होती है। बाप समझाते हैं ये हठ योगी किसी को जीवन मुक्ति और मुक्ति कैसे दे सकते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति तो परमपिता परमात्मा ही दे सकता है इन माताओं के द्वारा। मुक्ति जीवन मुक्ति प्राप्त करने वाले जरूर पुरुष भी होंगे, तो फिर औरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंची बुद्ध पाएंगे, मेजॉरिटी तो माताओं की है, नाम भी गोपाल कन्हैया रखा हुआ है। नाम कोई बैल पाल थोड़ा ही रखा है, तो इसमें पुरुषों को देवान नहीं आना चाहिए। देवान आने से माया उड़ाई देती है। बच्चे आते हैं निश्चय से कि हम आते हैं मोस्ट बिलीव्ड बाप के पास, ये आत्मा ने मुख से कहा मैं जाता हूँ परमपिता परमात्मा के पास राजयोग और ज्ञान सीखने के लिए, वर्षा लेने के लिए, नहीं तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। इस ख्याल के बगैर कोई आए तो संशय उठाए ले जाएंगे, माना अपना खाना ही बर्बाद कर देंगे, फिर तकदीर को लकीर लग जाती है। इसलिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयते संशय बुद्धि विनश्यते। पहले ही लिखा करके ले लेना चाहिए कि तुम किसके पास आते हो। लिखेंगे परमपिता परमात्मा के पास तो बस समझ लेना चाहिए कि वो ही समझेंगे। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करते हैं, नौदा भक्ति करते हैं, जब एकदम गले पर कुढ़ाई लगाने पर आते हैं तो कहते हैं अगर साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम तो मर जाऊंगा। बस फिर बड़ी मुश्किल से उनको दीदार हो जाता है, और वो साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूं। यहाँ तो बच्चों को मुझे साक्षात्कार कराना ही है, एम ऑब्जेक्ट है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की, इसलिए साक्षात्कार होता है। इसमें मेहनत की बात नहीं है, साक्षात्कार में मेहनत थोड़ा ही है, घर बैठे साक्षात्कार हो जाता है। 22/5/64 की वाणी का चौथा पेज। कभी कभी के बाबा को बच्चे कहते हैं कि हम देखें कैसे ध्यान में जाते हैं, बाबा कहते हैं संशय बुद्धि अगर बैठा होगा तो जरूर संशय उठाएगा। जो अनन्य पक्के होते हैं वो तो समझ लेते हैं, पूरा निश्चय न होने के कारण कोई कोई को संशय आ जाता है, फिर बाबा इसमें क्या करे, क्या बच्चों को राजी न करे। बाप तो एक सेकंड में साक्षात्कार करा सकता है। खुदा दोस्त की कहानी भी है, बाबा कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति की राजाई देता हूं, तो साक्षात्कार भी होगा। ये बादशाही यहां थोड़े ही रखी है, यहां की बादशाही में खुश नहीं होना चाहिए और रंजन होने की भी कोई बात नहीं है। भाभी ऐसी है, एक के बिगड़ने से दस बीस बिचारी बांधेली हो जाती है, और ये तो अंत तक होता रहेगा, फिर वृद्धि को भी पाते रहेंगे, क्योंकि दैवी जार की सैंपलिंग लग रही है, गवर्नमेंट जंगल की सैंपलिंग लगाती है, इसका नाम रखा है वन महोत्सव, यहाँ तो देवताओं की सैंपलिंग का उत्सव है। बच्चों को हर बात समझानी चाहिए। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो, याद तो करो परंतु वर्षा कैसे मिलेगा, इसलिए इनकी गोद में तो जरूर आना पड़े। मम्मा की भी गोद में जाते हैं क्योंकि जगदम्बा है ना, परंतु बच्चों को पूरी रीति रिफाइन न होने के कारण अनेक प्रकार के संशय आते हैं, फिर संग दोष में आने से संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। श्रीमत से ही बेड़ा पार होना है, बाप को तो आय पावन बनाना ही है। गुरु नानक ने भी कहा है जप साहब तो सचखंड का सुख मिले, जप साहब और सुखमनी वो ही अक्षर है, मनमना भव और मध्याजी भव। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो सचखंड का मालिक बनेंगे, ये दुनिया तो है ही झूठ खंड, फिर झूठ खंड से सचखंड जरूर होना है। यहाँ तो सच की रत्ती भी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी कहने से खेल ही खलास कर दिया है। मनुष्य के लिए भी 84 लाख योनियां, परमात्मा के लिए तो अनगिनत योनियां कह देते हैं। टिक्कर बित्तर कण कण में परमात्मा, तो बाबा तो इन बातों को सुनकर के हंसते हैं, ऐसा खेल बना हुआ है, भूल भुलैया का खेल। एक ही बाप बैठ बच्चों को रास्ता बताते हैं। इनकी आत्मा भी कहती है मुझे भी बाबा घड़ी घड़ी दिखाई पड़ते हैं, भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाए। बाप कहते हैं इस दुनिया में सभी नशे हैं बर्थनाटे पहनी, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं फलाना हूं, ये कोई काम के नशे नहीं है। सच्चा नशा तो तुम्हारा है, क्यों प्रेसिडेंट हूं वो तो 5 साल के लिए बनते हैं, कलेक्टर मिनिस्टर बनेंगे थोड़े टाइम के लिए बनेंगे, तुम्हारा नशा तो कितने जन्मों का है, 21 जन्मों का नशा है, 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हैं, बल कितना भी मल्टी मिलियनेयर हो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम तो बाप से राजा ही ले रहे हो, देह का अभिमान नहीं रहना है। हम नंगे आए थे फिर नंगे जाते हैं, बाबा के पास नंगा अक्षर कहने का अर्थ उन्होंने उल्टा उठा लिया है, तो फिर नंगे हो जाते हैं, नागे बन गए। बाप कहते मीठे बच्चे तुम सदा सलामत रहो। चिट्ठी में नूरे चश्म के कहते हैं सदा सलामत रहो, शुभ चिंतक होते हैं ना, बेहद का बाप भी शुभ चिंतक, कहते हैं बच्चे बा माया होती नहीं है तुम्हारा नुकसान करे, बाकी पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाना है, जो कल्प कल्पांतर का तोहफा तुम्हारा बन जाएगा। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती, जो कल्प पहले भी हुए थे फिर कल्प कल्पांतर होते रहेंगे, अभी पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाते हैं तो जरूर कल पहले भी किया था। तुम बच्चे हमेशा बाप का परिचय देते रहो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। आखिरी में तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा। जब तुम्हारा प्रभाव निकलता जाएगा तो आप ही उठते रहेंगे। समझाया जाएगा देरी से आए हो तो अब गैलप करके पुरुषार्थ करो। बहुत जोर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्योंकि बताया जाता है बहुत गई थोड़ी रही। इतनी बहुत गई हैं जहां के लिए बताया प्रभाव निकलता जाएगा आखिरी में। तो कौन सा टाइम है हैं? यही तो टाइम है। 70 साल निकल गए तो बहुत टाइम बीत गया। अब थोड़ा टाइम रहा है थोड़े टाइम में भी थोड़ा टाइम रहा राजधानी स्थापन होने के लिए। फिर भी समय तो लगता है ना। कितना योग में रहते हैं तो भी कुछ न कुछ होता रहता है। ढेर बच्चे हैं जरूर अच्छे फॉलोअर्स को एकदम छाती से जड़ देंगे। पपूत को थोड़ी छाती से जड़ेंगे। कहते हैं ये तो मुआ भला। कितना बहुतों का नुकसान कर देते हैं। तुम्हारा पढ़ाई का कनेक्शन तो शिव बाबा से मम्मा बाबा से अनुबन हो जाए या कोई से भी अनुबन हो जाए तो तुम पढ़ाई को तो न छोड़ो। पढ़ाई तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा घर बैठे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे से तो न बिगड़ो मेरी मत तो मानो। मेरी सजनी बनी हो तो मेरे से बुद्धि योग लगाओ। फिर भी मानते नहीं हैं। अच्छा ओम शांति।